आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
आज के संक्षिप्त समाचार वैशाली जैन के साथ। नेशनल्स पार्टी के नेता डेविड लिटिल प्राउड का कहना है कि वे पार्टी नेता के तौर पर अपने रिकॉर्ड पर कायम हैं। ये बयान ऐसे समय आया है जब सांसद कॉलिन बॉयज ने अगले हफ्ते नेतृत्व परिवर्तन की मांग करने की योजना घोषित की है। पिछले हफ्ते लिटिल प्राउड ने ऐलान किया था कि उनकी पार्टी लिबरल पार्टी के साथ गठबंधन से बाहर निकल रही है। ये फैसला विपक्ष नेता सूजन ली के साथ उस मतभेद के बाद लिया गया जिसमें नफरत भरे भाषण से जुड़े कानूनों पर नेशनल्स के 3 फ्रंट बेंच सांसदों ने अलग तरीके से मतदान किया था। वहीं कॉलिन बॉयज ने स्काई न्यूज से कहा है कि वे नेतृत्व को चुनौती इसलिए दे रहे हैं ताकि नेशनल्स पार्टी एक बार फिर लिबरल पार्टी के साथ गठबंधन व्यवस्था को बहाल करने पर विचार कर सके। वहीं ऑस्ट्रेलिया में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दिसंबर 2025 तक के 12 महीनों में 3.8% बढ़ा है। ये नवम्बर 2025 तक के 12 महीनों में दर्ज 3.4% की वृद्धि से अधिक है। ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार पिछले 12 महीनों में महंगाई बढ़ने के प्रमुख कारण आवास, खाद्य और गैर मादक पेय पदार्थ तथा मनोरंजन और सांस्कृतिक गतिविधियां रहीं। दिसंबर महीने में CPI मूल आधार पर 1.0% बढ़ा जबकि मौसमी समायोजन के बाद इसमें 0.2% की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं ट्रिम्ड मीन इन्फ्लेशन दिसंबर 2025 तक के 12 महीनों में 3.3% रही जो कि नवम्बर 2025 तक के 12 महीनों में 3.2% थी। वही पूर्व प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने ऐसे धार्मिक उपदेशकों की पहचान के लिए एक एक्रेडिटेशन प्रक्रिया की मांग की है जो नफरत फैलाते हैं और इस्लामिक धार्मिक शिक्षाओं की विकृत व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने ये टिप्पणियां अंतर्राष्ट्रीय होलोकॉस्ट स्मरण दिवस के अवसर पर यरूशलम में आयोजित एक एंटी सेमिटिज्म सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान दी। पूर्व प्रधानमंत्री मॉरिसन का कहना है कि बोंडाई हमले के बाद यहूदी विरोधी घटनाओं से निपटने के लिए ऐसे कदमों पर विचार किया जाना चाहिए जिनमें मुस्लिम नेताओं द्वारा उपदेश देने के लिए लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया और धार्मिक शिक्षाओं का अंग्रेजी में अनुवाद शामिल हो। रेडियो 2GB से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एंग्लिकन, कैथोलिक और यहूदी धर्म गुरुओं के लिए पहले से ही ऐसी मान्यता प्रक्रिया मौजूद है और उनका मानना है कि इसी तरह की व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाना तर्कसंगत होगा। हालांकि ऑस्ट्रेलियन नेशनल इमाम्स काउंसिल ने पूर्व प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन की टिप्पणियों की निंदा करते हुए उन्हें तथ्यों से परे और गलत जानकारी पर आधारित बताया है। देश में आगे एक अबोरिजिनल लैंड काउंसिल ने लंबित भूमि दावों पर ठोस कार्रवाई की मांग की है। न्यू साउथ वेल्स एबोरिजिनल लैंड काउंसिल ने 1983 में कानून लागू होने के बाद से अपना 60,000वां भूमि दावा दर्ज कराया है। इस दावे में कई पुराने लंबित दावे शामिल हैं, जिनमें कुछ 1984 के समय के हैं। न्यू साउथ वेल्स एबोरिजिनल लैंड काउंसिल के उपाध्यक्ष रॉस हैम्पटन का कहना है कि 40,000 से ज्यादा दावे अभी भी लंबित हैं और ये नया दावा उन समुदायों के लिए ठोस कार्यवाही शुरू करने का अवसर है जो दशकों से समाधान का इंतजार कर रहे हैं। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। कीमती धातुओं की कीमतों में जोरदार तेजी जारी है। सोने की कीमतें मंगलवार को 5,000 अमेरिकी डॉलर प्रति आउंस के स्तर पर पहुंच गई थीं। ये ऐतिहासिक बढ़त ऐसे समय पर देखने को मिल रही है जब बढ़ते भू राजनीतिक तनावों के बीच निवेशक सुरक्षित निवेश की ओर रुख कर रहे हैं। इन तनावों को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वैश्विक टैरिफ नीतियों में किए गए बदलावों ने और बढ़ा दिया है। ANZ के वरिष्ठ कमोडिटी रणनीतिकार डैनियल हाइंस ने SBS ऑन द मनी पॉडकास्ट से बातचीत में कहा कि हालिया राजनीतिक अनिश्चितताओं ने निवेशकों को असहज कर दिया है। साल 2025 से अब तक सोने की कीमतों में 64% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और अंत में खबरें भारत से। भारत के मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र ने यूरोपियन यूनियन के साथ हुए व्यापार समझौते का स्वागत किया है। कारोबारियों का कहना है कि इस समझौते से आने वाले वर्षों में भारत के निर्यात में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। भारत और यूरोपियन यूनियन ने मंगलवार 27 जनवरी को ये समझौता किया। यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन देर लायन ने इस करार को मदर ऑफ ऑल डील्स बताया है। इस समझौते के तहत 96.6% व्यापारिक वस्तुओं पर शुल्क को समाप्त या कम कर दिया जाएगा, जिसके चलते 2032 तक यूरोपियन यूनियन के भारत को होने वाले निर्यात के दोगुना होने की उम्मीद है। साथ ही बढ़ते वैश्विक व्यापार तनावों के बीच अमेरिका पर निर्भरता कम करने का लक्ष्य भी रखा गया है। इसी के साथ अभी मिली जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। हादसा बारामती के पास लैंडिंग के समय हुआ। सूत्रों के अनुसार विमान में 5 लोग सवार थे, जिनमें सभी की मृत्यु हो गई है। इसी के साथ 28 जनवरी 2025 के संक्षिप्त समाचार यहीं समाप्त होते हैं।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।